الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان سے پہلے لاسٹ ہماری کلاس ہوئی تھی، اس کے اندر ہم نے آیت 123 تک کیا تھا، جہاں پہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ جو آیات تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں، وہ ایک موضوع تھا جو چلا آ رہا تھا، وہ ختم ہوا تھا۔ اب اس کے بعد جو آیات شروع ہو رہی ہیں، ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ تو پہلے ایک دفعہ سیکوینس دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کر دیا، پہلے رکوع کے اندر مسلمانوں کا اور کافروں کا، اس کے بعد رکوع میں ذکر آ گیا منافقین کا، اس کے بعد جو اگلا رکوع تھا وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت انسانیت کے لیے، چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بتا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا مسلسل خطاب چلا آ رہا تھا، بنی اسرائیل کے غلط اعمال یا ان کی جو ہٹ دھرمی تھی ان کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ پھر وہ تمام چیزیں ختم ہوئیں جب، تو اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ کامن فیکٹر ہیں ان تمام مذاہب میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، اسلام کے اندر، گارنٹی کے ساتھ یہ کامن فیکٹرز ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی مذاہب ہیں، ان کے اندر خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمدی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ جو ہندوؤں کے ہاں جو برہمن ہے وہ اصل میں ابراہیم کے بگڑا ہوا نام ہے۔ تو آیت جو ہے وہ ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا اور ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ کچھ کلمات کے ساتھ، کچھ چیزوں میں، کچھ معاملات میں، کچھ حکموں میں، کچھ امر میں آزمایا اللہ نے جب ابراہیم کو، فاطمہ، تو اس نے ان تمام کے تمام کے اوپر وہ پورا اتر آئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اور ان کا پوری زندگی کا عمل جو ہے وہ اس آیت کے ایک حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل سم اپ کر دیا کہ جب کہ رب نے ابراہیم کو آزمایا تو وہ ان تمام چیزوں میں پورا اتر آئے تھے۔ یہ کیا چیزیں تھیں جن کی آزمائش کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ ایک پریزنٹیشن جو پہلے کافی عرصہ پہلے دکھائی تھی بنی اسرائیل کی، تو اس کے مطابق اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو تقریباً 4000 سال پہلے اس دور کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تب دنیا کے اندر یہ نیا کانسیپٹ ہی تھا بادشاہوں کا، اور اس وقت کی جو پہلی جو سپر پاورز بنی تھی دنیا کے اندر وہ تھا بیبلون امپائر یا بعد میں ایجپشن امپائر، یہ دو سپر پاورز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے عراق، آج کل کا جو عراق ہے، اس دور کا بیبلون یا بابل، اس کے شہر اُر کے اندر، جو اس دور کی پرانی آبادیاں تھیں وہ ہمیشہ سے تھیں، وہ دریاؤں کے ساتھ ہوتی تھیں، تو جو دریا تھا اس کے پاس یہ شہر تھا اور کا، ابھی بھی آپ کو میپ پہ نظر آ سکتا ہے یہ شہر۔ یہ وہاں پیدا ہوئے تھے، کس معاشرے میں پیدا ہوئے تھے؟ ان کے ماں باپ میں کوئی نبی نہیں گزرا ہوا، کوئی رسول نہیں گزرا ہوا، وہ قوم جو تھی وہ ہر اعتبار سے گمراہی کا شکار تھی۔ ان کا اپنا باپ جس گھر میں یہ پیدا ہوئے تھے وہ آزر جو تھا وہ بت تراشا کرتا تھا۔ سوسائٹی جو تھی وہ بادشاہ کی تھی، بادشاہ جو تھا وہ اپنی طاقت کے نشے میں اور پولیٹیکلی وہ اس قدر اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ وہ ہم خدا ہیں، خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، نمرود جو تھا وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ پرانے مذاہب کے اندر جتنے بھی ہیں ان کے اندر یہ کنسپٹ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو سمجھاتا تھا کہ یہ ون آف دا ڈائٹیز ہے، یہ خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر بھی اور خدا ہوتے تھے، بہت سارے خدا ہوتے تھے جن کا مطلب نام آتے ہیں، تھور آتا ہے، آئزس آتا ہے، بے شمار خدا آتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو رولر ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں بھی یہ خدا ہوں۔ تو اسی طرح ہی جو اس کے اندر تھا بیبلون کے اندر معاملہ تھا، وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا، اور سوسائٹی جو ہے وہ پوری کی پوری سوسائٹی وہ تاریکی میں بسر کر رہے تھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس زمانے میں آئے تھے تو تب ابراہیم علیہ السلام کے ہی جو نسل تھی، اسماعیل علیہ السلام اور بعد میں جو عرب قبائل بھی وہاں پہ آ گئے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دایا با جو دین تھا اس کو بگاڑ دیا تھا، لیکن کعبہ تو تھا نا، طواف بھی کیا جاتا تھا اس کا، وہ اور بات ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سب سے زیادہ اسلام کے اندر کیا حکم ہے کہ جو طواف کیا جاتا ہے یا حج عمرہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر انسان بالکل بیسک ہو کے جائے، امیر سے امیر کیوں نہیں، آپ بغیر سلے ہوئے دو کپڑوں میں آپ نے جانا ہے، طواف کرنا ہے اور حج عمرہ کرنا ہے۔ انہوں نے اس کو بگاڑ کے اس حد تک لے گئے تھے کہ سب سے متقی والا جو طواف ہوگا نا یا حج عمرہ ہوگا وہ ہوگا جو بندہ ننگا ہو کے کرتا ہے، اور ایون وہ دو کپڑا بھی انسان اپنے اوپر نہ پہنے۔ پھر اسی طرح جو باقی اور جو چیزیں تھیں ان کے بھی انہوں نے حلیہ بگاڑا ہوا تھا، اور دین کو انہوں نے سمجھ لیا تھا اپنا ایک فیسٹیو ٹائم سمجھا ہوا تھا کہ یہ جو دین ہے یا یہاں پہ جو کعبہ کا ہونا ہے یہ ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ कि हमें वसाइल हासिल होते हैं, लोग आएंगे यहाँ पे मन्नतें चढ़ाते हैं, चीज़ें करते हैं, तो कुरैश को उसके थ्रू इकॉनमी चलती है हमारी। बाकी अदरवाइज अगर आप जानने की कोशिश करें तो वहाँ पे क्या था, वो कोई सी पोर्ट तो था नहीं वो इलाका जहाँ पे कोई तजारती काफ़िले गुजरते हों। लेकिन मेरा पॉइंट देने का ये है कि एटलीस्ट रसूल सल्लम जिस दौर में आए थे तब एक रसूल जिनका नाम जानते थे वो लोग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम को जानते थे पूरी कौम, उनके जो दिया हुआ मज़हब या दीन था, जो वो दे के गए थे तालीमात, उनको बिगाड़ चुके थे पूरी तरह। लेकिन एटलीस्ट एक सोर्स मौजूद था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आए थे अपनी कौम के अंदर, तो वो कौम जो थी वो इस कदर गुमराही के अंदर शिकार थी वो, कि उनसे जब पूछा जाता था कि आप ये करते क्यों हैं इस तरह, तो उन्होंने यही जवाब देते थे कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह ही पाया है। दौर के अंदर और तारीकी गुनाह हर टाइप का वहाँ पे कौम में था। वहाँ पे अल्लाह ताला ने एक ऐसे नौजवान को पैदा किया जो पहले से नबी रसूल नहीं थे, उनको नहीं मालूम था कि वो रसूल हैं, लेकिन उनके दिल में ये ख्याल पैदा होता था कि ये क्या अमल करते हैं हम लोग, ये क्या अमल है जिसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है, ऑल्दो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र तो बहुत जगह आता है, सूरह अनाम की आयत के अंदर मैं अभी देख के बता रहा हूँ, वह इस कहा इब्राहिम अल अबी है आज़रा, और जब इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से, ये क्या है कि आप ये बुत जो है इनको अपना इला बना के बैठे में, इन्नी अरा का व कौम का फी जलाल मुबीन, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप और आपकी कौम तो खुल्लम खुल्ला गुमराही के अंदर है। माइंड में रखें कि ये जो आयात है इनके अंदर अभी नबूवत का कोई जिक्र नहीं हुआ, अभी एक बंदा जो अपनी सोसाइटी के अंदर ही पैदा हुआ था उसको वही एजुकेशन दी गई कि पेरेंट्स ने बताया कि ये माबूद है, ये है बाप का प्रोफेशन, ये है, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्शियसली उन्होंने रियलाइज़ किया या सोचा विद रीज़न सोचा कि ये क्या चीज़ें हैं जिनकी आप बंदगी कर रहे हैं। और आज़र क्योंकि था भी एक टेम्पल का रखवाला था, तो वो तराशना सफाई करना वो चीज़ें, वो कहते थे कि जिनकी हम बंदगी कर रहे हैं ये क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग एतकाफ़ करके बैठे हुए हैं। तो उनकी जो कौम थी वो यही जवाब दिया करती थी कि ये तो बस हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह पाया था। कालू वो कहते थे वजदना आबा ना लहा आबिदीन, असल में तो हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी दीन पर ही पाया है, वो इसी की बंदगी करते, तो हम भी इसी की बंदगी करते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था इब्राहिम अलैहि सलाम ने, काला लकद कुंतुम अंतुम आबाओ कुम फी जलाल मुबीन, कि यकीनन वो भी थे, अंतुम आप भी हैं, और आबाओ कुम और आबाओ अजदाद भी फी जलाल मुबीन, खुल्लम खुल्ला गुमराही के अंदर ही किन चक्रों में आप लोग पड़े हुए हैं, मेरे तो रीज़न ही नहीं इस बात को एक्सेप्ट करता कि आप इसकी बंदगी करें। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डेवलपमेंट साइकिल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, फलम्मा जन्ना इलैहिल लैल रआ कौकबा, जब रात हुई अंधेरा हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इसी में सोच रहे थे, सोचो विचार कर रहे थे, ये एक मकाम है जिस तरह रसूल सल्लम के ऊपर भी ये वक्त आया था कि जब 35 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया था उनकी एज को और अभी नबूवत नहीं शुरू हुई थी, तो वो क्या करना शुरू किया था आपसे सल्लम ने, गारे हिरा की तरफ जाया करते थे। क्यों जाया करते थे गारे हिरा की तरफ? वो बात ये थी कि रसूल सल्लम जो है अपनी सोसाइटी इन तमाम चीज़ों के गौर व फिक्र करते थे कि ये क्या मामला है, ये हम सोसाइटी किस चक्रों में फंसे हुए हैं, लोगों की गुनाह, लोगों की ज्यादती उनके ऊपर गौर करते थे, बदअमलियाँ उनके ऊपर गौर होता था, या जो सोसाइटी के अंदर अनजस्ट नाइंसाफ़ी होती थी उसकी तरफ गौर होता था। ये इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। अगर तारीख के अंदर हम पढ़ें, जैसे मिसाल के तौर पे जो बुद्धा जो था, बुद्धा एक्चुअली क्या था, वो अपने इलाके का प्रिंस था, हिंदुज़म की सोसाइटी थी वो वाली, वो अपने इलाके का प्रिंस था, सिर्फ 29 साल एज थी उसकी, शादीशुदा था, उसका बेटा भी था 1 साल का। उसने ये नोट किया कि अपने महल के अंदर मैं अपने अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, महल के अंदर मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, और लोग बाहर जाए वो बिल्कुल भूखे मर रहे हैं, ये ज़ातों का क्या तसव्वुर है कि ये ऊंची ज़ात है, ये घटिया ज़ात है, इनके तो इनको तो छूने भी नहीं देना, करीब भी ना आए ये लोग। तो वो उस चीज़ ने बुद्धा को इस कदर परेशान किया, इस कदर मायल किया कि वो बंदा जो अपने महल में रह रहा था साइशों में, वो महल छोड़ के अपनी बीवी को छोड़ के अपने बेटे को छोड़ के वहाँ से उस इलाके को छोड़ के चला गया था, और इसी तरह मेडिटेट करता था, सोचा करता था, ध्यान दिया करता था कि मामला क्या है, ये क्यों दुनिया का निज़ाम इस तरह क्यों है। ये माइंड में रखें, अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई आसमानी हदायत नहीं है अभी, अभी तो ये हमें पता है ना कि अल्लाह ताला ने इस तरह पैदा किया, मरने के बाद ये है फलाना है, ये भी इंसान की ह्यूमन नेचर की बात हो रही है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर, ह्यूमन नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी मार्फत और आखिरत की पहचान, ये दो चीज़ें डाली हुई हैं। विद रीज़न इंसान पहचान सकता है कि नहीं, ये मामलात ऐम ही नहीं चल रहे, कोई वाकई कोई रब है जो इस तमाम चीज़ों को चला रहा है, कोई पावर है जो ये कर रही है, चाहे वो नज़र में नहीं है लेकिन कोई पावर है जो ये काम कर रही है। हमारी अपनी अप्रोच में ये चीज़ें नहीं हैं। और दूसरा ये कि जो जुल्म और ज्यादती नज़र आ रही है और अकाउंटेबिलिटी का तसव्वुर, ये दो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर, हर इंसान की फितरत के अंदर डाली हुई हैं। आसमानी हदायत नहीं भी है तो एटलीस्ट अपनी पर्सनैलिटी के ज़रिए या अपनी गुड नेचर के ज़रिए वो ये पहचान सकता है इन चीज़ों को। तो बुधा का भी ये मामला हुआ था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका भी ये मामला था कि वो, हालांकि उनकी जो बीवी थी वो उस दौर की अमीर खातून थी, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो थी औरतों में सबसे अमीर थी, बिजनेस वुमन थी। उनके जो चचा थे जिनके घर में वो थे, माली एतबार से वो ज़्यादा अमीर नहीं थे लेकिन उनका स्टेटस क्या था, कुरैश के वो सरदार थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उन तमाम चीज़ों को छोड़ के, यानी कि अगर इस तरह देखें ना कि एक बंदा अगर एक बहुत बड़े अमीर घराने में पैदा हुआ हो तो आम रुझान क्या होगा, ऐश ही करो, जो इनहेरिटेंस में आपको मिला है ऐश ही करो, बल्कि और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करो, कि गरीब है तो होता रहे, और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करो। लेकिन जो लोग ज़्यादा अपनी फितरत के करीब हैं वो इस चीज़ की तरफ उनका दिल नहीं मानता या वो सुकून नहीं हासिल करते, उनका सुकून जो है वो कहीं और होता है। तो रसूल सल्लम ने भी इस स्टेज से गुजरे थे कि जाके मेडिटेट किया करते थे, गौर फिक्र किया करते थे कि दुनिया का निज़ाम आखिर इस तरह क्यों है। और यही मामला जो हुआ था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हुआ था कि अपने सोसाइटी, अपने इर्द गिर्द लोगों का जुल्म ज़्यादती देखते हुए, और उनके ऊपर कोई पकड़ भी नहीं हो रही लोगों की, और ये जो हमने खुदाओं का तसव्वुर बनाया हुआ है, ये बुत हैं, ये फलाने हैं और ये हमारी बख्शिश करवाते जाएंगे, मसला ही कोई नहीं है, तो ये क्या है, समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग समवेयर, ये ख्याल पैदा होया करता था। तो उसी कैफियत के अंदर जिस तरह रसूल सल्लम गारे हिरा के अंदर, आप इमेजिन करें अकेला बंदा कहीं के दिन का खाना लेके जाते थे, अकेला बंदा बैठा हुआ है, सीनरी देखने नहीं जाते थे वो, एंजॉय करने नहीं जाते थे वो, गौर व फिक्र करते थे इस कदर तन्हाई में जाके, इस कदर तन्हाई में जाके। ये जो लफ्ज़ होता है ना एतकाफ करना, अकफ कहते हैं एन काफ फे, अकफ कहते हैं गौर व फिक्र को, तवज्जो, तमाम चीज़ों को छोड़ के एक चीज़ की तरफ मतवज्जो हो जाना, एक चीज़ की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना है। मस्जिद में एतकाफ करना क्या है, तमाम चीज़ें छोड़ दो अपनी दुनिया की, कैरियर को साइड पे रखें, घर की परेशानियाँ, कोई बिल है, अदा हुआ है नहीं हुआ, फलाने की तबीयत कैसी है, तमाम चीज़ों को छोड़ के अपने आप को फोकस किया जाए अल्लाह ताला की तरफ। तो कोई ऐसी ही रात होगी जिस रात को इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तरह आसमान की तरफ गौर व फिक्र जब कर रहे होंगे तो एक चमकते हुए सितारे की तरफ उनकी नज़र पड़ी। सितारे तो खैर पूरी रात में हमें नज़र आ ही रहे होते हैं लेकिन प्रोमिनेंट, जिस तरह जब ये करीब वीनस और ये नज़दीक होते हैं तो ये ज़्यादा, सबसे बड़ा स्टार ये बना होता है, वीनस बना होता है, तो इनमें से कोई बड़ा स्टार होगा जिसकी तरफ उनकी मतवज्जो किया होगा उन्होंने। तो जिस तरह और बहुत सारे गुमराही वाले ख्यालात होते हैं पहले वक्तों के अंदर कि ये जो सितारे हैं ये फलानी चीज़ है, या ये जो मर जाते हैं ये उनका अक्स है, ये फलाना है, ये है वो है। एक 2003 के एक रिसाले के अंदर, ऑनलाइन मैगज़ीन के अंदर एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था शाहरुख खान का, अब कहने को मुसलमान है वो, उसने अपना ये ख्याल पेश किया था कि मैं जब बहुत परेशान होता हूँ या मैं बहुत अपसेट होता हूँ तो मैं रात को आसमान की तरफ देखता हूँ और सितारे को ये मैं समझता हूँ कि शायद ये मेरे पेरेंट्स हैं जिनसे मैं कम्युनिकेट करके फिर मैं आराम हासिल करता हूँ या मुझे एटलीस्ट रिलीफ मिलता है कि मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ और वो मुझे देख रहे हैं। तो इस तरह के अजीब अजीब तस्वर जो बने हुए हैं, इस तरह एक कोई तस्वर उनके माइंड के अंदर भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि ये एक प्रोमिनेंट चीज़ है। देखिए माइंड में अगेन दोबारा रिपीट करें कि अभी जो हमारे जहन में है कि दुनिया गोल है और इस तरह ये प्लैनेट्स होते हैं, वो ऐसी कोई चीज़ 4000 साल पहले कोई नज़दीक भी नहीं गुजरी थी। ये जो नीला नीला हमें नज़र आ रहा होता है वो लोगों के माइंड में क्या ख्याल आता होगा, ये क्या चीज़ें हैं, ये डॉट्स क्या नज़र आ रहे हैं हमें, और ये चांद और ये सूरज ये क्या चीज़ें होती हैं। वो दौर जब दुनिया को समझा गया था कि फ्लैट है वो, तो उस दौर के अतबार से अंडरस्टैंड करें, उन्होंने कहा ये क्या चीज़ होगी है जो देख रही है हमें हर वक्त, तो ये शायद रब है हमारा। क्या कहूँ ना, काल हाजा रब्बी, हाँ ये हो सकता है कि ये हो मेरा रब, कोई ऐसी ज़ात सुपर नेचुरल चीज़ की तरफ उनका तसव्वुर जा रहा था कि उन तमाम चीज़ों को रद्द करते हुए कि जो ये लोग कर रहे हैं इन्हें, ये बुत शुत इनमें कुछ नहीं रखा, हाँ हो सकता है ये मेरा रब हो, उसकी तरफ ध्यान हुआ। फलम्मा अफला काला ला हिब्बुल आफिलीन, लेकिन जब वो दूर चला गया, जहरी बात है कि वो स्टार जो था वो तो देर के लिए आया होगा और वीनस जो है वो हर वक्त तो नहीं जाहिर रहता, तो जब वो चला गया, गायब हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इस तरह तो पसंद नहीं है, जो डूब जाते हैं वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा रब नहीं हो सकता। फिर बाद में उनका ध्यान होया, फलम मारा कमरा, तो जब उनकी नज़र पड़ी चाँद की तरफ, और वो चाँद जो था वो रोशन था, चढ़ते हुए चाँद की तरफ जब नज़र पड़ी उनकी, तो उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है, ये मेरा रब हो। फलम मा अफला, और जब वो भी डूब गया, काला ला इल्लम यह दिनी रब्बी, और उन्होंने कहा कि अगर मेरे रब ने, जो भी रब है अल्लाह तू जो भी है, अगर तूने मुझे हदायत ना दीना, लाकूना मिनल कौम ज़ालिमीन, तो मैं भी फिर गुमराह कौमों में से हो जाऊंगा, मैं भी उन लोगों की तरह हो जाऊंगा जो गुमराह है। जो भी रब है मेरा, नहीं कि मैं पहचान नहीं पा रहा अभी तक अपने रब को, लेकिन तू जो भी है अगर तूने मुझे हदायत ना दी तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। फलम्मा रा शमसा, और जब उनकी नज़र पड़ी सूरज की तरफ, जब उनका ध्यान गया कि देखो मैं चाँद और चिन की तरफ देख रहा था, सूरज भी तो हो सकता है, और दुनिया के अंदर, तारीख के अंदर जितने भी मजाहब है जहाँ पे शिर्क इन्वॉल्व हुआ है, वहाँ पे हमेशा सूरज की परस्तिश की गई है, सन गॉड की हमेशा इबादत की गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि इंसान के अंदर जो अच्छे लोग होते हैं बाय नेचर, उनके अंदर एक जज्बा होता है शुक्रगुजारी का, किसी और बंदे ने आपके साथ अच्छा किया तो आप उसका शुक्र अदा करते हैं, एक हो गया ज़बानी शुक्र हो गया, फिर एक ख्याल रहता है उस बंदे का, एहसान माइंड में रहता है कि यार इसने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया था, तो कोई अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसको इन रिटर्न कुछ दूंगा। अगर कोई बंदा बहुत ही बड़ा है, कोई बंदा बहुत पावरफुल है, या ऑलरेडी उसके पास वो सब कुछ है, आप क्या उसका शुक्र अदा कर सकते हैं? तो वो फिर आप क्या होता है, उसके साथ अदब के साथ मिलते हैं, उससे उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बातें करेंगे। और अगर शुक्रगुजारी किसी ऐसी चीज़ की हो जो जिसका कोई बदल दिया ही नहीं जा सकता, जिस तरह सूरज की जो बंदगी थी, परस्तिश थी, उसका क्या होता था? सूरज ही वो होता है जब जिससे फसलें पकती हैं, सूरज ही है जिसकी वजह से मौसम जो है वो ठीक चलते हैं, सूरज ही वो है, सूरज ही है जिसकी वजह से बीमारियां दूर होती हैं। अगर रात हो या ठंड हो या अंधेरा हो, तारीकी हो, तो बीमारी का सिंबल होता है। आप देख लीजिए, कोई आपका कपड़ा गंदा होता है, कोई स्मेल होती है, कुछ होती है, हम धूप लगाते हैं उस चीज़ को, किससे बीमारी जाएगी, ख़त्म होगा सब कुछ। तो वो सूरज जिससे पूरा ये तमाम निज़ाम चल रहा है, इकोसिस्टम चल रहा है, उसके लिए अब शुक्रगुजारी क्या होगी? ऐसा जब मामला आता है तो फिर शुक्रगुजारी जो है वो रूप इख्तियार कर लेती है परस्तिश का, कि उसके फिर बुत बनाए जाएंगे, या उसके आगे हाथ टेके जाएंगे, या उसके आगे सजदे किए जाएंगे। तो उनकी जब नज़र पड़ी इस तरह सूरज के ऊपर, तो उन्होंने क्या कहा? हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये है मेरा रब, और यही तो है जो सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत काला, और जब वो डूब गया, काला या कौम इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, ऐ मेरी पूरी कौम के लोगों, मैं उन तमाम चीज़ों से बरी हूँ जिनको तुम परस्तिश कर रहे हो खुदा की। इन्नी वज्जह तो अल्लाह का नाम नहीं लिया, मैंने अपना रुख पक्का कर लिया है, फिक्स कर लिया है, फेर लिया है तमाम चीज़ों को छोड़ के उस ज़ात की तरफ जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, और मैं मुखलिस हो गया उसके साथ, हनीफा बमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं हरगिज उसको अपने रब के साथ किसी भी चीज़ को मुकाबले नहीं लाता। ये वो मकाम है, ये वो लेवल आ चुका है जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो अपने सोच, अपने फिकर, अपने ज़ात के अंदर अल्लाह ताला को पहचानते 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 बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गए थे कि अब उनके ऊपर फिर अल्लाह ताला ने वही उतारी, अपनी कौम, अपने लोग थे उनके अमल से बेजारी, फिर उसके बाद खुद सोचते रहे, मेडिटेट करते रहे, तो उनका ख्याल आया कि शायद कोई सितारा था, शायद ये चाँद है, फिर आया नहीं शायद ये सूरज है, लेकिन उस दौर के अतबार से आखिरी जो हद हो सकती थी वो थी। उसके बाद उससे भी ऐलान बिरात करके कि मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है, फेर लिया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, वो जो कोई भी है वो मुझे हदायत दे। वो जो पुकार रहे थे अपने रब को, तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आ गया, और अल्लाह ताला ने इनको अपने रसालत के लिए चुन लिया। तो उस जवाब के अंदर क्या था कि अब जाओ इसी को फैलाओ आगे जाके, लोगों को बताओ जाके कि तुम लोग किस गुमराही की तरफ हो। सूरह अंबिया की आयत 51 से 70 के दरमियान में बताया है, वलकद आतैना इब्राहीम रुश्दहु, और अल्लाह ने यकीनन इब्राहीम को हदायत बख्शी। फिर वो जो पुकार रहे थे तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने अपने कौम के लोगों से जब मुनाजरा करना शुरू किया, बहस व मुबाइसा करना शुरू किया, और ये कोई लॉन्ग, बहुत लंबा तवील अरसा होगा कि कितने अरसे तक बहस व मुबाइसा किया, कि अपने बाप से भी कहते होंगे, अपने घर वालों से भी, कौम के लोगों से, उनमें हमसाए भी होंगे, उनके यकीन दोस्त भी होंगे, इसकी तफसीर आती नहीं है, ये मैं खुद ही अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है रसूल सल्लम का दौर तो बाद का दौर था, उसके बाद तारीखें लिखी जाती थी, लोग पढ़े लिखे होते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर की तारीखें थोड़ी लिखी हुई है उस तरह की। तो जो कुरान और जो बाकी जगह हैं और हदीसों की जो बातें लिंकअप होती हैं उसके अंदर फिर फिलहाल मैं कह रहा हूँ बातें। जैसे तसव्वुर करें ना कि अपने कितने कितने दिन जो हैं अपने घर में समझाते होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो एटलीस्ट अलबदाया व नहाया जो किताब है उसके अंदर जो जिक्र आता है उसमें यह है कि इनके दो भाइयों का जिक्र आता है, तो कितने लोगों को समझाते होंगे। अपने भाई भी थे इनके के पेरेंट्स, इनके और घर में लोग, इनके हमसाए में जितने भी लोग होते होंगे उन सबको समझाते होंगे कि तुम लोग किन चक्रों में पड़े हो, क्या है जो आपके दिया करते थे। वो ये तो वही है भाई, हमने अपने आबाओ अजदाद को इस काम पे पाया है हमने, वो तो हमेशा यही करते आ रहे थे, तुम क्या नया पट्टी पढ़ाने आ गए हो हमें। तो ये जवाब जो है ये रसूल सल्लम को भी मिलता था, पुराने अम्बिया जितने भी थे उन सबको होता था, हमने अपने आबाओ अजदाद को। ये हमारे रीत है, ये हमारी रस्म है भाई, हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा तरीक़ेकार है। यही जवाब आज भी मिलेगा। आप किसी बात में अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करें कि ये जो हम लोग करते हैं ना, या ये जो हरकत है, या ये जो अमल है, या इस टाइप का काम करना, ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है। जब लाजवाब हो जाते हैं तो भाई ये क्या यार भाई, हमारे हम हमेशा इस तरह करते हैं, हमारे पेरेंट्स बेवकूफ़ थे तुम्हारे ख्याल में, हमारे बड़े को बेवकूफ़ थे जो इस तरह के काम करते थे, ये जवाब अभी भी मिलता है। हालांकि सीधी सी बात की अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर क्या कहा है, हर बात के ऊपर क्या है, हा तू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम वाकई सच्चे हो रहे हैं तो कोई दलील पेश करो। अगर दलील नहीं है और दूसरी तरफ दलील मिल रही है फिर उस दलील को मानो, ये कोई दलील नहीं है। जब हमने शुरू के अंदर आयत पढ़ी थी तो अल्लाह ताला ने जब दावत दी थी वो क्या था, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला क्या कहा था कि ए लोगो बंदगी इख्तियार करो, इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें भी पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप को भी ये पैदा किया था, और जिस तरह तुम अगर इंसान हो और तुमसे गलती हो सकती है और तुम ख़ता से पाक नहीं हो, या तो और लोग भी ख़ता से पाक रही हैं, सब वो भी वो ख़ता से पाक तो नहीं थे, अगर उनके अमल में कोई गलती थी कुछ थी तो वो कोई दलील नहीं है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को आके ये जवाब थोड़ी दिया जा सकता है कि अल्लाह मेरे पेरेंट्स इस तरह करते तो मैं भी इस तरह ही करता था। अगर इस दलील को लिया जाए फिर तो किसी बंदे को इस्लाम कबूल नहीं करना चाहिए, हर बंदा अपने माँ बाप को फॉलो करे कि जो उसके माँ बाप कर रहे थे बस वही करता रहे वो, तो ये कोई दलील नहीं है। जब कोई जवाब नहीं होता ना तो एक बेतुका जवाब जो होता है वो ये होता है कि भाई हमारा ये कल्चर है, हमारी ये रीत, हमारी रस्म है, हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है, हमारे ख़ानदान में इसी तरह ही होता आ रहा है। तो बहरहाल वो किस तरह कहते आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कितने अरसे इस तरह कहते आ रहे होंगे, एक वो फ्रिक्शन मुसलसल चल रही होगी सोसाइटी के अंदर, उन लोगों के सर्कल के अंदर एक फ्रिक्शन थ्रू आउट चल रही होगी। तो इसी सूरत के अंदर जो एक जिक्र आता है कि एक फिर एक इवेंट हुआ, एक कोई फेस्टिवल होना था शहर के बाहर जिसमें तमाम लोग गए उस फेस्टिवल में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार कर दिया, एक्सक्यूज़ कर लिया कि मैं नहीं जा रहा। जब वो सब लोग चले गए उस फेस्टिवल में, इन्होंने क्या किया, कुल्हाड़ी पकड़ी, मंदिर में गए और वहाँ जाके क्या किया, तमाम बुतों को तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के उनका हिस्से करके, और सबसे बड़ा जो बुत था उसके कंधे के ऊपर जाके हथौड़ी रख के आ गए। जब लोग वहाँ से अपने फेस्टिवल से वापस आए, उन्होंने आके देखा और जब मंदिर में गए तो ये क्या हो गया है, ये क्या हाल हुआ है हमारे मंदिर का, ये किसने हाल किया है। तो जब वो बातें आपस में कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को सुना है जो बगावत की बातें करते हुए, उसका नाम इब्राहिम है। उन तक जब पहुंचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक कि तुमने ये हशर किया हमारे महबूदों का, तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया, ये जो सबसे बड़ा इससे पता कर लो कि इसके पास है ना कुल्हाड़ी, इसी ने तोड़ा होगा, उन्हें हसद में आके जिस बड़ी वजह से आके इसने उनको तोड़ा होगा, इससे मालूम कर लो इन कानू यन के तून, अगर ये बात कर सकता है तुमसे तो फिर पूछ लो इससे। तो अल्लाह ताला कहते हैं फरजा उ इला नफ्स हम फ़कालू इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, उन लोगों ने इस बात को उस वक्त रियलाइज़ किया, ज़ुबान से नहीं कहा लेकिन उन्होंने अपने ही गहरबानों में झांक के देखा, रियलाइज़ किया कि यार वाकई हम कितने अजीब सी बात कह रहे हैं, जो इसने ये कहा है इसका क्या जवाब है हमारे पास। वो कह रहे हैं कि मालूम कर लो इससे, खुदा है तुम्हारा पता करवा लो कि क्या इसने तो नहीं हरकत की। उन्होंने ख्याल किया वाकई ये तो क्या डेड चीज़ है जिसकी तरफ हम बंदगी कर रहे होते हैं, अब ये मसला पड़ गया और हुआ भी मंदिर के अंदर है, वो खुदा भी सामने मौजूद है, ये हमें लाजवाब भी कर रहे हैं, हम क्या जवाब दें इसका। उनको जब इस बात की शर्मिंदगी हुई तो उन्होंने क्या कह दिया कि तुम जानते नहीं हो कि ये बातें नहीं करते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, तुम पे उफ़ है कि तुम किसकी बंदगी कर रहे हो, फिर ये क्या तुम लोगों ने हरकत की हुई है। यानी कि एक बड़े मजमे के अंदर इतने लोगों को फेस करना। इमेजिन करें ना, इंडिया के अंदर बिलफर्ज, इंडिया के किसी मंदिर के अंदर जहाँ पे सारा हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी है, वहाँ पे एक ऐसा मसला हो जाए, किस तरह की आग भड़केगी, क्या मामला होगा वहाँ पे। और वहाँ पे एक अकेला नौजवान, और वो ये कह रहा है कि क्योंकि इस आयत के अंदर जिक्र किया गया है कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, तो इनकी जवानी का टाइम था ये, और जवानी के अंदर कोई ऐसा वाक्य नहीं था कि वो दूसरे कामों में लगे हुए, अपने इंजॉयमेंट के लगे हुए हैं। जवानी के टाइम के अंदर उन्होंने इस तरह फेस किया पूरी सोसाइटी को, और जब वो लाजवाब हो गए, उन्होंने कहा पकड़ के लेके जाओ इसको बादशाह के पास, देखो बादशाह क्या बात करता है इससे, देखो अभी इसको सजा देते हैं। उठा के लेके गए। जो हमारी सजा होती है, जो हमारे यहाँ कैपिटल पनिशमेंट होती है, जिस तरह एक दौर के अंदर सूली चढ़ाना सबसे बड़ी होती है, तो जो हमारी आग है ना उसके अंदर इसको जलाएंगे, इसको लग पता जाएगा सारा, इसके अंदर ईमान और तकवा और ये बातें जो बड़ी कार है ना, ये सारी निकल आएंगी। फिर इसी दिन अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर जिक्र किया हुआ है, अलम तरा इलल लजीना हाज इब्राहिम फी रब्बिही, क्या उस शख्स की तरफ नहीं देखा जो इब्राहिम से लड़ रहा था या बातें कर रहा था, हुज्जत कर रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में। अन आताहुल्लाहुल मुल्क, जिससे अल्लाह ताला ने बादशाह दी हुई थी, लेकिन जो बादशाह था नमरूद के सामने जब पेश किया गया और ये केस लाया गया कि इसने ये हरकत की है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा है क्या, तुम्हारा केस क्या, मामला क्या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत पेश की, अल्लाह रब है और ये तुम लोग किन चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो, और ये जो है ये मामला हुआ है सारा, तो ये जवाब लेके देख लो उससे। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, ज़रा बताओ तो सही, रब के बारे में कुछ बातें तो बताओ। काला इब्राहिम रब्बिल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो कि जिंदा करता है और मारता है। उसने काला अना उही व उम्मीद, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, जिंदा कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। उसने क्या किया कि वो ये, उसने इस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिया कि देखो ये एक मुजरिम था ना जिसको डाला हुआ था हमने कैद के अंदर और इसको सजा देनी थी, मैंने इसको ज़िंदगी बख्श दी, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी, इसको सजा मिलने वाली थी, मैंने इसको ज़िंदगी बख्श दी, आज़ाद हो तुम जाओ। और एक मासूम को उठा के पकड़ के उसके मरवा दिया उसे, और कह दिया ये देखो इसके पास ज़िंदगी थी ना, मैंने इसको मौत दे दिया। उसने इस कॉन्टेक्स्ट में ले लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, जब यहाँ पे बात नहीं बनी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या, काला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याते बिश्शम्स मिनल मशरिक, मेरा रब तो वो है, अल्लाह तो वो ज़ात है जो मशरक से सूरज को निकालता है, फ़ातबिहा मिनल मगरिब, अगर तुम्हारे अंदर कोई ऐसा अख्तियार समझते हो तो मगरब से उसको खींच के निकाल के दिखा दो। तो अल्लाह ताला कहते हैं फ़बोहतल्लज़ी कफ़र, तो वो जो काफिर जो था वो हक्का बक्का होके रह गया। और रसूलल्लाह सल्लम की एक हदीस है कि सबसे मुश्किल जहाद या सबसे बड़ा जहाद ये है कि एक जालिम जाबिर बादशाह के सामने कलमा हक कहना। तो हम लोग तो जालिम बादशाह जाबिर उसके तो खैर दूर की बात है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ गीबत करने वाले लोग हैं। तो हम लोग अगर बिलफर्ज कोई बात थी, वाकई आप कलमा हक के ऊपर थे, आपकी बात ठीक थी, पीछे तो जब होंगे दोस्तों के साथ या तो फैमिली के साथ या बाकी और बड़े छोटे होंगे फैमिली के, तो खूब कीमतें हो रही होंगी उसकी, देखो उसने ये किया, फलाना किया, वो हुआ, वो सामने आएगा तो आवाज़ तक नहीं निकल रही होगी। कहाँ एक थोड़ा सा और बड़े लेवल के ऊपर आ जाते हैं, कोई किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर किसी बड़े के साथ आप लोग को मसला हो गया था, वहाँ पर जाके तो वहाँ पर भी हवाएं निकली होती हैं कि यार अगर कोई मसला हो गया, मैंने कोई बात कह दी तो आइंदा मेरे रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ जाए, या ये मुझे निकाल ना दें, या मेरे पेरेंट्स को ना बुला लें, या मेरी लेटर ना इश्यू हो जाए, या मेरा करियर के ऊपर धब्बा ना आ जाए कि इसके बारे में फलाने ने ये रिपोर्ट लिखी थी। प्राइवेट सेक्टर है तो जॉब से निकाल दिया जाएगा, पब्लिक सेक्टर है तो ये होता है कि मेरी रिपोर्ट एक दफ़ा गंदी हो गई तो आगे तो मेरा मामला ख़राब होगा, तो ये बेहतर क्या है, बस हिकमत क्या है, बस चुप ही रहो, बस ठीक है, बस नीवी नहीं हो गए, चलते जाओ, बस काम चलाओ अपना। तो ये मामला होता है, कहाँ ये बात कि हम तसव्वुर करें कि ज़ालिम जाबिर बादशाह के सामने ये बात की जा सके। मिसाल के तौर पे कि जब मुशरफ का दौर ख़त्म होने के करीब था, सिविलियन गवर्नमेंट वापस आ रही थी, पंजाब का गवर्नर था जनरल खालिद मकबूल, इसका जब दौर था, गालियां खाई हुई इसने भी पूरे टाइम के अंदर, टीवी के ऊपर उसको बुरा भला कहा जाता था, और जारी बात है क्योंकि मुशरफ ने बनाया हुआ था तो ये था भी सुपर किस्म का चमचा था मुशरफ का, तो अवाम बहुत बुरा भला कहती थी। जब ये हो गया, चेंज हो गया गवर्नर, इसने इस्तीफ़ा दे दिया, मुशरफ ने एक्सेप्ट कर लिया और गवर्नर चेंज हो गया, तो उस वीकेंड के ऊपर हम लोग जा रहे थे, लाहौर जा रहे थे, तो भेरा के ऊपर मोटरवे पे रुके थे, तो एक लैंड क्रूजर टाइप गाड़ी थी, याद तो नहीं मुझे एग्जैक्टली कौन सी थी, वाइट कलर की, तो वहाँ पे देखा कि लोग काफ़ी खड़े हुए हैं ना, पता नहीं क्या मामला है, तो वो देखा कि खालिद मकबूल था और उसके साथ लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे, हाथ मिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जफड़ियाँ डाल रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। ये है हमारे अंदर की मुनाफ़त, कि एक बंदे को पहले तो गालियां दिए जा रहे हैं कि ये तो ऐसे ही खबीस हैं, ये तो हैं चमचे हैं, ये फलाने हैं, ये इस तरह के हैं, और ये तो चमचा माल है, तो फलाना है, ये है वो है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई इतनी है, खुद ऐयाशियां कर रहे हैं, गालियां भी गालियां दे रहे होते हैं। लेकिन जब पता लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में फलाना आ रहा है, आपको डिग्री उसने देनी है आपको लाके, या आपकी वो फलाना हो, बस तो बड़े दिन तैयार शहर हो के झुक झुक के मिलेंगे, उसके साथ हाथ मिलाएंगे, बड़ी प्रिविलेज होगी, बताया जाएगा कि मैं उसके हाथ मिलाया हुआ मैंने उसके साथ। लोग तस्वीरें खींच के, अगर कोई अपॉर्चुनिटी कभी मिले तो तस्वीरें खींच के अपने ड्राइंग रूम में लगाई होती हैं कि मैं फलाने लीडर से वो एक दफ़ा मैं तब मिला था, चाहे वो लीडर भी छोटी सी भी उसका होगा, लेकिन मैं उसे मिला हुआ हूँ। अपनी शादियों के ऊपर या अपने इवेंट्स के ऊपर अगर अप्रोच में होता है तो ऐसे बड़े लोगों को बुला के प्रिविलेज फील करते हैं, पूरे खानदान को तो पता लगे हमारा भी कोई टैका है, हमारे को मिलने वाले लोग हैं हमारे। तो ये तो हम भाई तो पर्सनैलिटी करीब से भी नहीं गुजरती कि जो यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर चुके थे, कि उन्होंने को उनके साथ कोई भी नहीं था, अकेले, बिल्कुल अकेले। और बादशाह तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी हुक्म दे सकता है, सबके सामने बादशाह के सामने ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई, फबोहे तल्लजी कफर, अल्लाह ताला कह रहे हैं बिल्कुल हक्का बक्का होकर रह गया कि अब मैं क्या जवाब दूँ बादशाह। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जो है वो ऐसी ज़ालिम कौम को हदायत नहीं देता, यानी कि वो बादशाह ने हदायत नहीं पकड़ी उस चीज़ से, उसने वाकई सोचा नहीं कि ये मेरे अख्तियार में तो नहीं है सूरज को कंट्रोल करना, तो फिर ये किसके अख्तियार में है, कुछ तो हो, कोई तो ज़ात होगी जिसके अख्तियार में होगा। और यहाँ पे जिक्र तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इसका मामला भी उस जैसा ही हो जो मामला हरकल का हुआ था, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुँचा था उस तक, और उसने मालूम करवाया था कि कोई मक्का से लोग आए हैं, तो वो मालूम करके मुझे बताओ, मैं उस इंटरव्यू करता हूँ। इत्तफाक से अबू सुफियान उस सब गया हुआ था और ईमान नहीं लाया था, ये पहले के वक्त की बात है, सुलह हुदैबिया के बाद की। तो उसने इंटरव्यू किया था अबू सुफियान का, और सवालात पूछे थे, 9 सवाल पूछे थे। सही बुखारी के अंदर जो पहली किताब है किताबुल वही, उसकी जो 7वीं और आखिरी हदीस है वो है, पूछे भी किस तरह थे अबू सुफियान को खड़ा करके बाकी लोगों को साइड पे खड़ा कर दिया जो अबू सुफियान के साथ थे, कि अगर ये कहीं गलत कहना है तो तुम लोगों ने बताना है, हाईलाइट करना है। तो अबू सुफियान ने, क्योंकि बाद में हदीस खुद ही रिवायत की थी ईमान लाने के बाद, तो इसलिए ये बयान किया हुआ है कि मुझे अगर वहाँ पे शर्मिंदगी या हरकल के उसका खौफ ना होता ना तो मैं झूठ बोलता, लेकिन जो उसको ये था कि ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज़ बोलूँ और जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे जाके करेगा तो मैं मारा जाऊँ, तो इसलिए मुझे फिर बोलनी पड़ी बात जो सच था। तो जब 9 सवाल पूछ लिए तो उसके बाद हरकल ने खुद 9 सवालों का जवाब दिया कि मैंने ये सवाल क्यों पूछे थे, और उसने कह दिया कि मैं तवक्को नहीं करता था कि मदीना में वो आखिरी रसूल आएगा, यानी कि वो ईमान लाने के बिल्कुल करीब आ चुका था हरकल। उसने बाद में अपने दरबारियों के सामने जब जिक्र किया कि इस तरह ईमान लाने का तस्करा किया, तो वो तो बिल्कुल एकदम से आपे से बाहर हो गए और रोड के ऊपर उतर आए, और ये शौक में चला गया कि मैं, यानी कि वो तवक्को नहीं कर रहा था कि अगर मैं इस तरह का इजहार करता हूँ तो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग मान लेंगे। तो उसमें क्या जिक्र आता है, तो हरकल ने एकदम से फिर पलटा खाया और बात को किस तरह बयान कर दिया कि मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा था कि तुम लोगों के अंदर कितनी कुव्वत है लड़ने के लिए और तुम लोग अपने दीन पे कितने कायम हो, बस ये आजमाना चाह रहा था। तो तमाम लोग जो हैं वो राज़ी हुए, हरकल को सजदा किया, और हदीस के आखिरी अल्फाज क्या हैं, ये उसके ईमान का इख्तिताम था। हो सकता है नमरूद के साथ भी कोई ऐसी कैफियत गुजरी हो, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको लाजवाब कर दिया, हो सकता है उसके जहन के अंदर भी ख्याल पैदा हो गया हो कि अगर वाकई ऐसा मामला है तो कोई और रब है, लेकिन हो सकता है वो पोलिटिकल पावर अपनी या अपनी इज्जत या अपनी तमाम चीज़ों की वजह से वो चुप रह गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसी जालिम कौम को मैं हिदायत नहीं देता। उसके बाद क्या हुक्म हुआ था, आग जलाई गई थी और उसको फेंक दो आग के अंदर, इसे आग के अंदर फेंक दिया जाए इसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा हैं अभी तक, उनको मॉरल सपोर्ट के लिए कोई बंदा साथ नहीं है उनके, अभी उनका कोई बड़ा नहीं है जिनसे वो हेल्प ले सकें अगर कोई परेशानी होती है। बंदा जब इमोशन में बहुत ज़्यादा भर जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो बड़े बड़े लोग होते हैं वो रो पड़ते हैं अपना दिल हल्का करने के लिए, सहारा चाहिए होता है हमें, इंसानों को सहारा चाहिए होता है कि कहीं से कोई मॉरल सपोर्ट मिल सके। कभी कभी ईमान का लेवल बिल्कुल नीचे जा रहा होता है तो ज़रूरत होती है कि कोई और बंदा आपको इनक्रेज करे इस बात की तरफ, सीधी चीज़ की तरफ लेके आए। बिल्कुल तन्हा अकेले, बाप ने भी डिसोन कर दिया, वो तो बल्कि मैंने आयात किससे नहीं पढ़े वो वाले, और भी आयत कुरान के अंदर आती है, तो बाप ने कहा था तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तुम मुझे नज़र ना हो, मुझे तुम ऐसे तुम बुरे हो कि तुमने तो मेरे नाक कटवा के रख दी है, مجھے شہر میں شرمندہ کر کے رکھا ہوا ہے. تو تمام لوگوں نے ڈسون کیا تھا. جب یہ ذکر آتا ہے تو کوئی ذکر نہیں ملتا کہ کسی نے کوئی سفارش کی ہو ان کا, کوئی انہوں نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو صحابی تھے, ان کا تو کوئی ساتھی ہی نہیں تھا, کوئی بالکل تنہا. لیکن معاملہ کیا ہوا تھا کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, انہوں نے کوئی چیخ پکار نہیں تھا کہ اچھا نہیں مجھے موقع دے دو یا نہیں, کوئی ان کے کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں آئی. آگ میں جلنا کیا ہوتا ہے, تو اس کو تصور یوں کر کے دیکھیں کہ اگر ایکسپیریمنٹ کرنے کا شوق کہنا تو کبھی ماچس یا چولہے کے اوپر رہا, کہتے ہیں کہ چلو ہم اس کو آگ کو نہیں ٹچ کرتے, صرف ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں, کین وی بیئر اٹ, صرف یہ کر کے دیکھتے ہیں کتنے سیکنڈ ہم بیئر کر سکیں گے. آگ کو نہیں ابھی ہم ٹچ کر رہے ہیں, ابھی ہم اوپر کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں صرف, کہ آگ کے اوپر جو ہیٹ نکل رہی ہوگی وہ آف کورس اس سے کم ہے, اوریجنل آگ تھوڑی ہے, یہ صرف اس کی ایمیٹڈ ہیٹ ہے اس کی, ہم تو اس کو نہیں ٹچ کر سکیں گے. اور بالفرض جو چند سیکنڈ رکھیں گے نا, جو ایریا ہے نا وہ ہمیں چند دن تک درد کرتا رہے گا, جو جلن کا درد ہو رہا ہوتا ہے. اور ان کو پتا ہے کیا میرے ساتھ کیا ہونا ہے, جلوں گا میں, کس طرح جلوں گا, کیا حال ہوگا میرا. لیکن وہ کیا شعر ہے, بے خبر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جب ان کو آگ بھڑکائی گئی اور آگ میں پھینکا گیا, تمام لوگ آ گئے, اور یہ دیکھو یہ جو باغی ہے نا جو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا, یہ دیکھو اس کے ساتھ پبلک کیپیٹل پنشمنٹ ملنے والی ہے, اسے آگ میں پھینکا جائے گا. تمام لوگ جمع ہوئے, سب کچھ ہوا, اور جب پھینکا گیا ان کو آگ میں تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا, کل نہ ہم نے کہہ دیا, یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. آگ جو ہے وہ اللہ کے تابع تھی, رب اللہ ہے, آگ کے اللہ نے حکم دے دیا, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے. یعنی کہ آگ صرف بجھ گئی ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام بچ گئے ہوں گے, آگ بجھی بھی ہوگی اور ٹھنڈی بھی پڑ گئی ہوگی, پھینکا ہے اور اسی دوران یہ سب کچھ ہو گیا. ورنہ اگر آپ کوئی کہیں کہ آگ بہت جلائی بھی ہے, لکڑیاں کوئلے جلا کے جلایا تھا, آگ بجھ بھی جائے تو کوئلے شولے کتنی دیر تک جلتے رہتے ہیں, وہ تو تپش رہے گی نا اس کے اندر, جلائے گی تو وہ. اللہ تعالیٰ کہیں سب کچھ ٹھنڈا کر دیا اس نے, وہ سلام علی ابراہیم, اور سلامتی بن جا ابراہیم کے اوپر, ابراہیم کو تم نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا. اب اس کے بعد آگے ذکر نہیں ملتا ایگزیکٹلی کہ اس کے بعد معاملہ ہوا کیا تھا, قوم سے کیا بات ہوئی, کیا ہوا. وہ البتہ اس کے بعد ایک شخص اور ایمان لے آیا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر, وہ تھا ان کا بھتیجا جو لوط ہے. لوط علیہ السلام جو ہیں وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں. جب وہ ایمان لے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسول بنایا تھا, اور ان کو بھی بھیج دیا تھا اردن اور اس علاقے کی قوم کی طرف بھیج دیا تھا. وہ آپ کو پتہ ہے یہ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا, وہ قوم جو تھی وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی وہ قوم تھی جو ہومو سیکشوالٹی کے اندر انوالو تھے. ابراہیم علیہ السلام کو پھر وہ جگہ چھوڑ کے جانی پڑی, ان کو نکال دیا گیا یہاں سے کہ یہ تو پتہ نہیں یہاں ٹھہرے گا تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. انہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر, وہ گئے فلسطین گئے. ان کا کیا حال تھا, وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہیں تھی, ان کی بیوی جو تھی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مانج تھی, ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہ دعائیں نہیں مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ مجھے اولاد دے, اللہ مجھے بیٹا دے, مجھے اولاد دے, ڈیفینیٹلی کتنا مانگتے ہوں گے. اور ہماری نماز اور ہمارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور ہماری دعا مانگنا وہ اس رسول کے دعا کے نزدیک بھی نہیں لگ سکتی جو وہاں پہ انہوں نے دعا مانگتے ہوں گے جس توجہ کے ساتھ. ہم نے تو شاید کبھی زندگی میں ایک دفعہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کے کوئی دعا مانگی ہوگی, واقعتاً کہ ہم نے اتنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوا ہو کہ شاید وہ ایک موقع ہی آیا ہوگا یا ایک دو, اور بہت سارے کی زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ موقع نہیں آیا ہوگا. ہم میں سے کوئی ہے جو آج تک نماز میں رویا ہو, نماز پڑھتے ہوئے رونا آ رہا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہو؟ نہ جی, ہم نے کیوں رونا نماز کے اندر, ہمارے نماز میں تو خیالات ہی دوسرے آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اول تو ہم میں سے کوئی پانچ وقت کا نمازی ہوتا ہی نہیں ہے. جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ کس طرح کے نمازی ہوتے ہیں, کہ ان کی نماز کیسی ہوتی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز ایسی ہوتی ہے جس طرح کبا ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے زمین پہ, تو بس وہ اس طرح ٹھونگے مار رہے ہوتے ہیں صرف. اب دیکھیں, تصور کریں اس دور کے اندر کہاں عراق ہے, کہاں فلسطین ہے, اور سفر کرتے ہوئے جانا ہے, کیا تکلیفیں آئی ہوں گی, کیا مصیبتیں آئی ہوں گی. یہ سب باتیں سنا تو ہے, کوئی نئی میں معلومات تو کوئی نہیں دے رہا, میں صرف یہ چلا رہا ہوں کہ جو جو میں بتا رہا ہوں نا اس کو ہم سب فیل کرنے کی کوشش کریں. کیا ہم کسی کے کہنے کے اوپر ہم اتنا لمبا سفر اختیار کر سکتے ہیں, کہاں کہاں تم نے جانا, سب کچھ چھوڑ کے جاؤ, اپنا ابائی گھر, اپنا علاقہ, جو کچھ بھی تھا, اور اس دور کے اندر जो रसूलों को जो सबसे बड़ी धमकी कौम दिया करती वो क्या होती थी, या तो हम तुम्हें सूली चढ़ा देंगे या तुम्हें शहर से निकाल देंगे। वहाँ पे तो जो बंदा जहाँ होता था वो उसी शहर का ही होता था, और तो कोई ना जान ना पहचान, पूरा ख़ानदान एक ही जगह आबाद होता था, सारी प्रोटेक्शन उधर ही होती। सबसे बड़ी जो धमकी दी जाती थी वो ये दो ही होती थी। तो वो खुद फिर गए छोड़ के अपनी बीवी को साथ ले के, कितना तकलीफदेह सफ़र होगा जो फ़लस्तीन तक उन्होंने तय किया होगा। रास्ते में कहाँ कहाँ जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौमों को दावत देते जा रहे हैं, हर एक ने रद्द किया हुआ। फ़लस्तीन में गए हैं, उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया है और वो गए हैं मिस्र, इजिप्ट। कहाँ फ़लस्तीन, कहाँ मिस्र, वो जो सारा बनी इसराइल इतना लंबा सफ़र किया था, इतने अरसे बाद पहुँचे थे, वो सारा काम जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी किया था। हिजरत जो है वो बहुत बुलंद चोटी के अमल में से है। वो करके जब वहाँ पहुँचे हैं तो मिस्र में क्या मामला हुआ था, मिस्र में जो फ़िरौन था उसकी जो नज़र पड़ी थी इसकी बीवी के ऊपर सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर, उसने कहा था इसको उठा लो मेरे लिए, उसको उठवा लिया गया था, अगवा करवा लिया गया था और वो अपने महल में ले गया था। वो फिर बाद में जब वो बिल्कुल बदअमली करने लगा था उनके साथ, तो अल्लाह ताला की तरफ से मुजज़ाती तौर पर वो एक मामला हुआ था, वो लंबा वाक़या नहीं बताना चाह रहा अभी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको समा बचा दिया और उसका रोब इतना हुआ फिरौन के ऊपर कि ईमान तो वो भी नहीं लाया, लेकिन एटलीस्ट रिलीज़ कर दिया दोनों को कि निकालो इनको यहाँ से, जाओ फ्री हो हमारी तरफ से। मिस्र में ही उनकी शादी हुई थी फिर हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। वहाँ से जब निकले हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी मांग रहे होंगे, इसी के आस पास कोई टाइम था कि जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्लाम के अंदर जो तहारत के मामलात हैं वो हुक्म दिए, जिसके अंदर नाफ के नीचे बाल काटना, बाजुओं के नीचे के जो बाल हैं उनकी बात हो गई, मूछों को तराशना, नाखून जो हैं उनको करना। तो इसी में एक हुक्म जो है इन्हीं 10 चीज़ों में वो है खतने का हुक्म है, सर्कमसीजन का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र अंदाजन 80 बरस थी जब उनको ये हुक्म मिला था, उन्होंने खुद अपना खतना किया था, उन्होंने खुद अपना खतना किया था। फिर उसके बाद और जो मामला आगे चलता रहा, सूरह साफ़ात के अंदर दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार, वो आती है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फबशर नाहू बिगुलाम हलीम, तो जब बिल आखिर अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दी, कब जाके खुशखबरी दी, जब 87 ईयर्स के हो गए थे, इस कदर बुढ़ापे को चले गए थे, तब जाके वो फरिश्ते आए थे और उन्होंने आके खुशखबरी दी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आपके यहाँ बेटा होगा। तो उनकी बीवी ने क्या कहा था, कुरान के अंदर जो आता है कि अपना सर पीटती हुई आई थी और कहा था कि अब औलाद होगी हमारे यहाँ, जबकि मैं पूरी ज़िंदगी बांझ रही हूँ और ये तो अब बिल्कुल बुढ़ापे के इंतहा को पहुँच चुके हैं 87 ईयर्स की एज तक। तो उन्होंने क्या कहा, अल्लाह की तरफ से ये अभी हुक्म आया है और यही हुक्म आया है, तो आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाई जाती है। लेकिन जब बेटा, जब वो मामला हुआ, जब औलाद हो गई, अब जब औलाद हुई है तो अल्लाह की तरफ से अगला हुक्म क्या आ गया, अब जाओ अपनी इस बीवी को और अपनी औलाद को छोड़ आओ, कहाँ, उस वादी में, उस जगह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मक्का की बात हो रही है, वहाँ जाके छोड़ के आओ इन्हें। रास्ते में थ्रू आउट गए होंगे, आप सोचे तो सही कि कोई बाप अपने बेटे को, न्यूली बॉर्न बच्चे को छोड़ के आ सकता है इस तरह, अपनी बीवी को साथ छोड़ के आ सकता है। नो आइडिया कि वहाँ पे क्या होगा, रात को क्या मामला होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ चंद खजूरें या थोड़ा बहुत पानी होगा चंद देर, थोड़ी देर के लिए, और क्या होगा। बातें आपको सब पता है, मैं सिर्फ फील करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरह पहले जवानी के अंदर अपनी सोसाइटी से लड़े, सोसाइटी के आगे उन्होंने फेस किया, बादशाह के आगे वो बात की, आग में फेंका गया उन्हें, हिज्जत करके छोड़ के गए, उनकी बीवी के साथ क्या मामला हुआ, खतना अपना खुद किया उन्होंने अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद जब अल्लाह ने उनको औलाद दे दी, बिल आखिर इतने साल दुआएं मांगते रहे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने औलाद दे दी, तो उसके बाद हुक्म आ गया आप औलाद को छोड़ के आ जाओ। तो कोई सवाल नहीं कि अल्लाह के किस तरह पले गया, ये कौन इसका ख्याल रखेगा, बस हुक्म आया कि जब छोड़ के आना तो वहाँ गए छोड़ के आया। हाजरा सलामुन अलैहा के साथ जिक्र नहीं किया कि क्या मामला है, जब वो जा रहे थे वापस लौट के तो वो पीछे पुकार के कह रही थी कि क्या मामला है, क्यों छोड़ के जा रहे हो इस तरह, तो उन्होंने सिर्फ इशारा करके कहा कि अल्लाह का हुक्म है, तो बस वो भी आगे चुप रही कि फिर इसका मतलब है अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। क्या पूरे वापस जाते हुए रास्ता, पूरे रास्ते उनका दिल वहाँ पर अटका नहीं होगा कि अब शाम हो गई है, अब फलाना हो गया, कोई खाना मिला कि नहीं मिला उन्हें, फलानी चीज़ मिली है कि नहीं मिली, किसी ने हेल्प की कि नहीं की, बिल्कुल अकेली तन्हा जगह के ऊपर, कोई बंदा भी नहीं है वहां पे, वहां छोड़ के आए थे। फिर अल्लाह ताला और क्या जिक्र करते हैं, फलम्मा बलगा, फिर जब वो लड़का जो था बलगा बलागत की उम्र को पहुंचा, जब यंग हुए तो क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिलने गए अपने बेटे से तो क्या कहा, काला या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी रआफ, ऐ मेरे बेटे मैं ख्वाब में ये देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। और ये नबी का ख्वाब जो है वो वही की कसम होती है, इसमें शैतान का अमल दखल नहीं होता, नफ्स का कोई नहीं होता, तमाम ख्वाब जो होते हैं नबी और रसूल के वो सच्चे होते हैं। तो उन्होंने ये ख्वाब में जब देखा कि इस तरह मैं ज़बह कर रहा हूँ, तो बताओ तुम्हारा तुम क्या कहते हो उसे, काला या अबतिफ अल मा तुमर, ए मेरे अबू आपको जो नज़र आ रहा है ना, जो आप देख रहे हैं, बस आप वो कर डलें, सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन, अब इंशाल्लाह देखेंगे कि मैं सब्र करूंगा इस मामले में। तो बाप बेटे दोनों का मामला, बाप कह रहे बेटे से मैं तुम्हें ज़बह करूंगा, कहाँ पहले मांग मांग के अल्लाह ताला की तरफ से आ गया, जब दिखा दिया गया कि तो इब्राहिम तुमने अब अपने बेटे को मेरी राह में इस तरह ज़बह करना है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिजबीन, और फिर जब उन्होंने उनको लटा दिया और ज़बह करने के लिए और बस छुरी फेर दी, तो क्या हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आ गई वहाँ पे, वना दई ना हो अय्या इब्राहिम, पुकारा हमने ए इब्राहिम, कद सद्दक तरू या, तुमने तो वो ख्वाब भी सच्चा कर दिखाया है, इन्ना कजाल लेकर नज़िल मोहसिनीन, तुम तो एहसान के बुलंद तरीन मकाम तक पहुँच चुके हो। कहाँ वो तमाम आजमाइशों का दर्जा 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 दर्जा, तो ये वो पस मंज़र है कि जब फिर बिल आखिर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया जो हमने अभी आयत का हिस्सा पढ़ा था, वइज़ब तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फतम्मा हुन्ना, जब इब्राहिम के रब ने उसको आजमाया था मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, तो वो एक एक में पूरा उतर आया। तो ये एक एक चीज़ यानी कि इंतहा हो गई कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि बस अब और आजमाइश मैं नहीं करूँगा तुम्हारी, तुमने तो एहसान का दर्जा हासिल कर लिया है, वो बुलंदी चोटी का मुकाम हासिल कर लिया है। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो इसको अगली क्लास के अंदर मैं कंटिन्यू तो करूँगा। फिर इसी का ही एक बहुत बुलंद मकाम, एक बहुत बुलंद मकाम वो ये है कि वो शख्स जिसने अपनी जवानी से ले कर इस कदर बुढ़ापे तक उनका कोई दोस्त नहीं था, उनके कोई रिलेटिव ने उनका साथ नहीं दिया, अकेले तन्हा रहे वो पूरी ज़िंदगी, इस तरह तन्हा तन्हा दावत तबलीग करते रहे वो, कोई दोस्त नहीं था उनका दुनिया में, तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या कहा, वमन अहसनु दीना मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि वहुवा मोहसिनु, उस शख्स से अच्छा और कौन हो सकता है दीन के मामले में कि जो अल्लाह ताला के आगे अपना सर झुका दे, वहुवा मोहसिनु, एहसान की ज़िंदगी गुजारे। वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और इब्राहीम के जो तरीका था उसी की पैरवी करे जो कि यकसू थे अल्लाह की खातिर। अब यही तारीफ वाला जुमला है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, किसी ने इब्राहिम को दोस्त नहीं बनाया था ना, तो अल्लाह कह रहे हैं मैंने इब्राहीम को दोस्त बना लिया अपना, यानी उनको ये मकाम हासिल हो गया कि इंसानों ने हर एक ने रद्द किया था, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बनाया। ये टाइटल अल्लाह ताला किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करते पूरे कुरान के अंदर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैका।